प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज फिर से एक बार परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें हम सुलेमान, जो इस पुस्तक का लेखक है, उसके द्वारा अपने जीवन में उन अनुभवों को प्राप्त करने के पश्चात कही गई बातों को हम देख रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। आइए आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से हर एक की रक्षा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने सदाचारी को भलाई करने वाला मनुष्य कहा है, हम उसे काम करता हुआ भी देखते हैं। वह कहता है, यदि आप ईमानदारी निभाएं और सदाचार का जीवन जिएं, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। एक औसत मनुष्य ऐसा ही जीवन जीता है, जिसे हम मध्य मार्ग का जीवन कहते हैं। वह एक विशाल नगर में बत्ती के नीचे दुकान लगाने वाले के समान है, परंतु उसका रहन सहन उसी बड़े नगर के उपनगर में सबसे अलग एकांत में, अलग ही अपने पड़ोस में, दुनिया से अलग जी रहा है। वह सोचता है कि वह अपने ही परिश्रम से स्वर्ग प्रवेश करेगा, मैं अपना उद्धार कमाऊंगा, मैं सच में एक भला मनुष्य हूं। उसके जीवन के सिद्धांत कठोर हैं और उसके जीवन में आनंद नहीं है। उसका आनंद का समय शाम के समय होता है, जब वह शराब पीता है, परंतु वह बड़ा निराशजनक और दुख का निष्कर्ष निकालता है। हमने देखा है कि सबोपदेशक की शिक्षाएं क्रांतिकारी हैं, वे सूर्य के नीचे वास करने वाले मनुष्य की बातें हैं। ये मसीही दृष्टिकोण नहीं है और न ही परमेश्वर का दृष्टिकोण है। वे हमें सूर्य के नीचे रहने वाले मनुष्य के निश्चयतात्मक निष्कर्ष सुनाते हैं। मैं इस पुस्तक को निराशा की पुस्तक भी मानता हूं। यह एक अध्याय विशेष करके निराशा से भरा है। बाइबल की यह पुस्तक भेड़ों के झुंड में एक काली भेड़ की नाई है। यदि कोई चाहे तो इस पुस्तक में अनेक संदर्भ खोज सकता है जो धर्मशास्त्र का खंडन करते हैं। वे धर्मशास्त्र की महान शिक्षाओं के विपरीत हैं। यही कारण है कि यह पुस्तक नास्तिकों की मनपसंद पुस्तक है। वोल्नी और वेल्टर ने इस पुस्तक से बहुत संदर्भ काम में लिए हैं। यह जीवन का निराशवादी सिद्धांत है। कुछ आधुनिक धर्म संप्रदाय अपने मूल सिद्धांतों को इस पुस्तक पर आधारित किए हुए हैं। यह पुस्तक धर्मशास्त्र में क्यों रखी गई है, हमें लेखक के उद्देश्य को देखना होगा। उसका मुख्य विचार क्या है, वह क्या दिखाना चाहता है, क्या वह मसीही सिद्धांत प्रकट करना चाहता है। हम यह ना भूलें कि सुलेमान एक समय परमेश्वर के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहा है। उसने परमेश्वर के बिना आनंद खोजने के लिए अनेक प्रयोग किए और सूर्य के नीचे निष्कर्ष निकाले। सांसारिक मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण यही है। अतः मसीह से रहित मनुष्य इसके संदर्भ दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक को समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। समुद्र की मछलियों के शरीर पर खुरंट होते हैं और आकाश के पक्षियों के पर भी होते हैं। ये दो प्रकार के जीवन हैं। चिड़िया मछली से नहीं कहती कि उसके शरीर पर तो पर नहीं है, इसलिए वह गलत है। बंदर और शार्क यदि चाहें तो समुद्री सतह पर बहुत विवाद कर सकते हैं। बंदर कहेगा कि समुद्री सतह नीचे है और शार्क कहेगी कि समुद्री सतह ऊपर है। इस प्रकार सवोपदेशक की पुस्तक सूर्य के नीचे धरती पर है और मसीही जीवन स्वर्गीय स्थान में है जहां परमेश्वर है। सूर्य के नीचे रहने वाला मनुष्य जीवन का अलग दृष्टिकोण रखता है और सूर्य के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर अलग दृष्टिकोण रखता है। हम दो अलग अलग संसार में दो अलग अलग जीवन शैली देख रहे हैं। सूर्य के नीचे का जीवन सांसारिक है जिसमें परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। वह बिना परमेश्वर के भविष्य और अनंत जीवन को देख रहा है। मसीही जीवन प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में इसका विपरीत है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और वह उसके अनुग्रह का प्रदर्शन है। अतः हम देखते हैं कि मानवीय जीवन के दो अलग अलग क्षेत्र हैं और एक क्षेत्र के नियम और सिद्धांत दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं होते। वे एक दूसरे से वैसे ही अलग हैं जैसे समुद्र के नीचे का जीवन और ऊपर आकाश का जीवन। क्योंकि यह एक सच्चाई है इसलिए मसीह में विश्वास न रखने वाले को कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद का वचन सुनाना व्यर्थ है। कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मेरे प्रियो, अब जो मसीह में नहीं है और मसीह में जिलाया नहीं गया है वह इन बातों की खोज नहीं करेगा क्योंकि ये बातें स्वर्गीय हैं। पहले तो उसे नया जन्म लेना है कि नई सृष्टि बन जाए या हो जाए। अतः किसी से वह बातें करे तो मसीही विश्वास से करना है, तो व्यर्थ समय लगाना है। यह ऐसा है जैसे कछुए को उड़ना सिखाया जाए, उसे केवल पानी अच्छा लगता है और वह उड़ना नहीं चाहेगा। हम में से कई लोग जिस जीवन को जी रहे हैं उसी में रहना पसंद करते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जैसा हमने देखा है सवोपदेशक सुलेमान के प्रयोग हैं जो उसने जीवन के संबंध में किए। उसने सूर्य के नीचे धरती पर सब कुछ करके देखा कि उसकी आत्मा को संतोष प्राप्त हो। अतः इस पुस्तक के प्रत्येक विचार को इस प्रकाश में देखना होगा। सुलेमान ने ज्ञान के आधार पर जी कर देखा और उसका निष्कर्ष निकाला। सवोपदेशक 12 अध्याय उसके 12 पद में, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। उसने भोग विलास का जीवन देखा और कहा, मैंने जीवन से घृणा की। उसने धन की अधिकता में निर्वाह किया और कहा, 5 अध्याय के 10 पद में, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। तब उसने धर्म के काम करके देखे और कहा कि धर्म मनुष्य को बावला बना देगा या ठग बना देगा। उसने प्रसिद्धि और नेक नामी का मार्ग अपनाया और अंत में यही देखा कि सब व्यर्थ है और आत्मा का कुड़ना है। एक उपन्यासकार ने एक अति उत्तम उपन्यास लिखा है, वैनिटी फेयर, निस्सारता का मेला। यह वेकी नामक एक लड़की की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि नेपोलियन का युद्ध है। इसमें परमेश्वर से रहित नायकों के जीवन में पाप की नश्वरता का वर्णन है। यह लेखक एक विश्वासी था। उसने पुस्तक का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, खेल समाप्त हुआ, अब कठपुतलियों को बक्से में रखते हैं, सब व्यर्थ है और आत्मा का कुढ़ना है। मेरे प्रियो, आप आज भी मनोरंजन और सुख विलास के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। ये वे स्थान प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के हैं और नशीले पदार्थों और नींद की गोलियों पर उनका वर्चस्व है। परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना जीवन व्यर्थ है। संत अगस्तीन एक संदर्भ दिया करते थे, तूने हमें अपने लिए बनाया है और मनुष्य का मन जब तक तुझ में विश्राम न पाए चिंतित रहेगा। जी हाँ, मनुष्य का बनावट ऐसा है कि आप उसमें संपूर्ण संसार भर दें तो भी वह तृप्त न होगा। सबोपदेशक के पुस्तक के संदर्भ समाजवाद की पुष्टि के लिए काम में लिए गए हैं। राज्य और सैनिक बल का एक ही समाधान है, प्रभु यीशु। वही एकमात्र समाधान है। अन्य सब मार्ग व्यर्थ और निराशा है। प्रभु यीशु के साथ बहुतायत का जीवन है। तो मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। जी हाँ, वह भविष्य की चिंता नहीं करता है। अनंत जीवन के विषय में तो वह सोचता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता ही नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं सबोपदेशक 9 अध्याय के 2 पद में, सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने वाले ना करने वाले, सबों की दशा एक सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसे ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा, वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि आप किसी भी मार्ग पर चलें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वे सब एक ही अंत पर पहुंचेंगे। स्मरण रखें कि यह परमेश्वर का उत्तर नहीं है, यह सूर्य के नीचे धरती पर रहने वालों का विचार है, क्योंकि वह सांसारिक मनुष्यों के जीवन को देखता है और यह मनुष्य का ही विचार है। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। कोई परिश्रम क्यों करे? यह जीवन एक बड़ी लॉटरी है। आप अपनी परिस्थितियों के मारे हैं। जो भाग्यशाली है और अपना भाग पाता है वह आपके साथ बांटे। हमारे आज के सिद्धांत नए नहीं है। कार्ल मार्क्स ने नया कुछ नहीं कहा था, सुलेमान तो उससे कहीं अधिक जानता था। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परंतु जो सब जीवतों में हैं उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। ध्यान दीजिए, यदि आप इस विचार पर चलते हैं कि खाना पीना और आनंद करना, क्योंकि कल मर जाना है, तो आप चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मरने से अच्छा तो जीवित रहना है, चाहे आप मूर्ख बनकर ही जिए। जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, क्योंकि सिंह के सामने वह दहाड़ सकता है। सबोपदेशक 9 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। मेरे प्रियो, यहीं से जीवात्मा के सोने का विचार उभरता है। पद 10 भी हम देखेंगे, परंतु यह सूर्य के नीचे धरती पर रहने वाले मनुष्य की बातें हैं। यदि मरणोपरांत जीवन का विचार ना हो तो ऐसा ही लगता है। यही कारण है कि वह कहता है कि मरे हुए शेर की अपेक्षा कुत्ता बनकर जीना अच्छा है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। शरीर कब्र में रखा जाता है, अतः शरीर सो जाता है। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार हमारी आत्मा, परमेश्वर की संतान की आत्मा, प्रभु के पास चली जाती है। हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:6-8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आत्मा, वास्तविक जीव, प्रभु के पास चली जाती है। हमारे शरीर सांसारिक हैं, जैसे तंबू जिनमें से आत्मा एक दिन निकल जाएगी। अतः आप देख सकते हैं कि आत्मा का सोना मसीही विचार नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं सोता है। सबोपदेशक 9:6 में लिखा है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि यह एक निराशाजनक अध्याय है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन व्यर्थ, निरुद्देश्य और अर्थहीन है। यदि मृत्यु ही अंत है तो मनुष्य पशु के समान है। क्रमिक विकास के मानने वाले कहते हैं कि मनुष्य कभी जानवर था, परंतु सूर्य के नीचे यह मनुष्य कहता है कि मनुष्य अब भी जानवर के समान ही है। दोनों का अंत एक सा ही होता है। मनुष्य का अंत एक पशु के समान ही है। मेरे मित्रों, हमारे लिए यह कैसी भिन्न अनुभूति है कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना हैं और एक दिन परमेश्वर के पास लौट जाएंगे। यह सिर्फ उनके लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अन्यथा हर एक इंसान यही सोचता है कि वह मर जाएगा और पशु के समान उसका भी जीवन खत्म हो जाएगा। सबोपदेशक 9:7 में हम पढ़ते हैं, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। सदाचारी जो मृत्यु को अंत मानता है उसे शराब से आनंद प्राप्त होता है, मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। यह संसार के अत्यधिक निरस जीवन के बारे में है। तब हम आगे पढ़ते हैं सबोपदेशक 9:8 में, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। वह साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मर्यादित दिखता है और दिखाना चाहता है। सबोपदेशक 9:9 में पढ़ते हैं, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। वह कहता है कि अपने विवाहित जीवन का आनंद ले। अनेक अविश्वासी दंपति अपने विवाहित जीवन का आनंद लेते हैं। मैं ऐसे अनेक दंपतियों से भेंट कर चुका हूं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, परंतु वे कहते हैं हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। एक और पद है जिस पर आत्मा के सोने का विचार आधारित है। आइए हम पढ़ें सबोपदेशक 9:10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। जी हाँ, यह सच है कि कब्र में पड़ा शरीर हाथ में हथौड़ा नहीं उठा सकता है, मस्तिष्क पुस्तक नहीं पढ़ सकता। सुलेमान केवल शरीर के बारे में कह रहा है। सुलेमान केवल शरीर के बारे में ही हमें कहता है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। वह हाथ के बारे में कह रहा है, आत्मा के बारे में नहीं। हाथ कब्र में जाएगा और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप प्रभु के पास चले जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, तो आप मृत्यु लोक में होंगे जब तक कि आपको श्वेत सिंहासन के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होने हेतु फिर से जीवित ना किया जाए। जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, इस बात को आप समझ लें। इस पुस्तक में आत्मा के सोने की शिक्षा नहीं है, अब वह सामाजिक अन्याय और अल्पसंख्यक वर्गों की चर्चा करेगा। आइए हम पढ़ें सबोपदेशक 9 अध्याय उसके 11 पद। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में हैं। सूर्य के नीचे रहने वाले मनुष्य का निरीक्षण उसे विश्वास करने पर बाध्य करता है कि जीवन समय और अवसर की बात है। यह एक बहुत बड़ी लॉटरी है। आप काले हैं तो आपकी अपनी समस्या है, यदि आप गोरे हैं तो आपकी अपनी समस्याएं हैं, यदि आप पीले हैं तो आपकी अपनी ही समस्याएं हैं। यह सब समय की बात है, आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां यही विचार प्रस्तुत किया गया है। सबोपदेशक 9 अध्याय के 12 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदायी जाल में और चिड़िये फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। यदि समय और अवसर जीवन के नियंत्रण करता है तो आप वैसे ही असहाय हैं जैसे जाल में फंसी मछली। यह एक भयानक विचार है, सबसे खतरनाक निराशवाद है। यह उन लोगों का मानना है जिनके बारे में मैंने बताया था कि वे सप्ताह के अंत में रेल यात्रा करके अपने घर को जाते थे। उनका कहना है कि यदि वे रेल यात्रा में घिर जाएं तो वे घिर जाएं। यदि मेरा समय आ गया है तो मैं मर जाऊंगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जाल में फंसी मछली के समान है। सदाचारी के लिए इसकी कोई भी व्याख्या नहीं है, वह इससे विधि का विधान मानने के लिए बाध्य है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सुलेमान एक और दृष्टांत सुनाता है। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। मेरे समाजवादी भाई, जरा ध्यान से सुनना, क्या आप इस पद दलितों का उत्थान चाहते हैं? क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करना चाहते हैं? क्या आप कमजोर वर्ग को उठाना चाहते हैं? क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? क्या मैं आपसे कह सकता हूं, एक राजा आएगा, एक महान राजा, और उन मनुष्यों का विरोध करेगा जिन्होंने अपनी सुरक्षा त्याग कर मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करना चाहा, परंतु उद्धार से रहित मनुष्य सफल ना हुआ। उन्हें 6000 से अधिक वर्ष दिए गए, परंतु उन्होंने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं खोजा। परमेश्वर उन्हें और कितना समय दे। वह महान राजा ऐसे नगर को अपने अधीन करेगा, तब समाजवादी विधियां अपनाई जाएंगी। सबोपदेशक 9 अध्याय के 15 पद में लिखा है, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। ध्यान दीजिए कि यह कौन था जो मुक्ति लाया। उसका नाम ज्ञान था, और ज्ञान प्रभु यीशु का नाम है। वह गरीबी में इस पृथ्वी पर आया। उसने कहा, मतिरचित सुसमाचार 8 अध्याय के 20 पद में, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। जी हाँ, वह एक गरीब मनुष्य था, फिर भी उसने हमें उद्धार दिया। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्पन्न है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत में प्रभु यीशु की वाणी जयवंत होगी। जब वह आएगा तब उसकी वाणी प्रधान स्वर्गदूत या तुरही के जैसे होगी। आज संसार में अनेकों की आवाजें हैं, परंतु प्रभु के आने पर उसकी आवाज इन सब की आवाज को दबा देगी, क्योंकि वह शीघ्र ही आने वाला है। मेरे प्रियो, क्या आज आप उस प्रभु को जानते हैं जो आपको अपने राज्य में रखना चाहता है, या आप इस संसार में रहते हुए उस विचार पर अपना जीवन जी रहे हैं कि खाना पीना और एक दिन मर जाना है। एक दिन आपका न्याय होगा, मेरा न्याय होगा, और हम सबको परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा। आइए हम अपने आप को तैयार करें और इस वचन के द्वारा से, इस लेखक के द्वारा से उन बातों को देखें कि क्या मैं इस संसार में रह करके संतुष्ट हूं, यदि नहीं तो क्यों, मैं किसके पास जाऊं और कैसे मैं अपने जीवन में शांति पा सकता हूं, सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा से। प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब आज के इस अध्ययन के द्वारा से अवश्य ही लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के।